नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर सकती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज तीन देशों सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के शहजादे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज तीन दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। भारत ने जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को खाद्य सामग्री भेजी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष सुलझाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। और नवदीप सिंह ने पेरिस में पैरालंपिक खेलों में पुरूषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक और महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में सिमरन शर्मा ने कांस्य जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर सकती है। कल जम्मू में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से श्री शाह ने कहा कि उन्होंने स्वयं वर्ष 2019 में संसद में कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक होंगे क्योंकि ये चुनाव अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद पहली बार कराए जा रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि ये आजादी के बाद पहला अवसर होगा जब जम्मू कश्मीर की जनता एक ध्वज यानी तिरंगे और बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के तहत मतदान करेगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल जम्मू कश्मीर में पुरानी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ बातचीत के पक्ष में हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शांति बहाली होने तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी।
370 हटने से जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई। जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी।
श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार गुज्जरों, पहाड़ियों, बकरवालों और दलितों सहित किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने देगी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आरक्षण दिया है। सरकार ने तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया है। श्री तुहिन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के उड़ीसा संवर्ग के अधिकारी हैं। फिलहाल वे वित्त मंत्रालय में दो महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी सचिव हैं। इनमें लोक उद्यम विभाग तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेने के लिए आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दो दिन की इस यात्रा के दौरान वे परिषद के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं।
खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है, जहां लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। यात्रा के दूसरे चरण में डॉ जयशंकर मंगलवार को दो दिन की यात्रा पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन जाएंगे। यह बर्लिन की उनकी तीसरी यात्रा होगी। जर्मनी भारत में सबसे अधिक निवेश करने वाले देशों में से एक है। डॉक्टर जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 12 तारीख से स्विट्जरलैंड में जिनेवा जाएंगे। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री उन संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे जिनके साथ भारत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर जयशंकर स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। समाचार कक्ष से प्रवीण गौतम।
संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत पहुंच रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात का कार्यक्रम है। इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। श्री खालिद के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। श्री खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। वे कई ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। आर्थिक विकास, निवेश, व्यापार और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच मौजूदा भागीदारी रचनात्मक सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बन गई है। दोनों देशों ने वैश्विक स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने के मामले में भी प्रतिबद्धता दर्शाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफ्रीका के तीन देशों जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी के सूखाग्रस्त इलाकों में लोगों की अनाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कल जिम्बाब्वे के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा गया। जाम्बिया को 1300 मीट्रिक टन मक्का भेजा गया है। मंत्रालय के अनुसार इस मानवीय सहायता से जाम्बिया की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार ने अलनीनो के कारण सूखे की स्थिति से जूझ रहे मलावी के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष के समाधान में भारत और चीन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वयं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा था कि मौजूदा संकट के समाधान में भारत की भूमिका अहम हो सकती है। सुश्री मेलोनी का ये बयान इटली में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद आया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने यूक्रेन की यात्रा के दौरान श्री ज़ेलेंस्की से कहा था कि वर्तमान संघर्ष को समाप्त करने के लिए यूक्रेन और रूस को तुरंत वार्ता करनी चाहिए और इस क्षेत्र में शांति बहाली में किसी भी भूमिका के लिए भारत तैयार है। श्री मोदी ने कहा था कि भारत शुरू से ही इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में रहा है और वे इसके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने को भी तैयार हैं। यूक्रेन की यात्रा से लगभग 1.5 महीने पहले श्री मोदी ने रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से कुमार राधारमन।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन इस महीने की 15 तारीख तक किए जा सकेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जनवरी में इस पुरस्कार का आयोजन करता है। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। इस पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों की ऊर्जस्वता, संकल्प, क्षमता और उत्साह को सम्मानित करना है। पुरस्कार के लिए 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे पात्र हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगा। ये राशि छठी कक्षा से स्नातकोत्तर तक के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाएगी, जिसमें 15,000 से 2,00,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता शामिल है। ये छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को IIT, IIM और विदेश में पढ़ाई के लिए दी जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी इस वर्ष 1 अक्टूबर तक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। पता है sbif.aashascholarship.org। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इसका आयोजन प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस वर्ष का विषय है बहुभाषी शिक्षा संवर्धन, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। कल इस दिवस की पूर्व संध्या पर विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य मौजूदा दौर में साक्षरता के विभिन्न आयामों पर विमर्श करना था। सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा की। मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन के टिकट परीक्षक रामअवतार मीणा ने एक महिला यात्री की जान बचाकर बहादुरी का परिचय दिया है। शुक्रवार को एक ट्रेन के पुणे स्टेशन पहुंचने पर एक महिला यात्री फिसल गई, जिससे उनकी चलती ट्रेन के नीचे आ जाने का खतरा था। मौके पर श्री मीणा ने महिला को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। मध्य रेलवे ने श्री मीणा के प्रयास को साहसिक बताया है। दिल्ली के रफी मार्ग स्थित ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में आज से 5 दिवसीय राष्ट्रीय समूह कला प्रदर्शनी फ्यूज का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में लगभग 40 प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा 100 से अधिक उत्कृष्ट कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। आगंतुक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक इस प्रदर्शनी को देखने जा सकते हैं। प्रदर्शनी का समापन इस महीने की 12 तारीख को होगा। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैरालंपिक खेलों के 10वें दिन कल भारत ने 2 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा में पहले स्थान पर रहे ईरान के खिलाड़ी को अनुचित व्यवहार के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। उससे पहले महिलाओं की 200 मीटर ट्रैक स्पर्धा में सिमरन शर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरालंपिक खेलों की तालिका में अब भारत 29 पदक जीतकर 16वें स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। उधर यूएस ओपन टेनिस में बेलारूस की आरियाना साबालेंका ने पहली बार का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराया। ये साबालेंका का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज अमेरिका के टेलर स्विट्स का मुकाबला इटली के जानिक सिनर से होगा। ये पहला मौका है जब सिनर किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पेरिस पैरालंपिक पदक विजेताओं को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर नवदीप सिंह ने खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया है और देश को उन पर गर्व है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य जीतने वाली सिमरन शर्मा देश के लिए और पदक जीतेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सिमरन की सफलता उनके कठिन परिश्रम, समर्पण और संकल्प का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिमरन की सफलता अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में आज, मध्य और महाराष्ट्र और उड़ीसा में कल तक के लिए तेज वर्षा का अनुमान है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, विदर्भ, तटीय कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले सप्ताह भारी वर्षा हो सकती है। इस बीच तेलंगाना में बाढ़ग्रस्त खम्मम और महबूबाबाद जिलों में कल तेज वर्षा हुई। महबूबाबाद में आज सुबह 6 बजे तक 182 मिलीमीटर और खम्मम के तल्लाड़ा में 122 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मुन्नेरू और अन्य नदियों में उफान की आशंका के कारण इन जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इस बीच खम्मम और महबूबाबाद सहित 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुमराम, भीम, आसिफाबाद, मंचियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री और कोठागुडम समेत 10 जिलों में अगले 2 दिन तक वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिन तक राज्य के सभी जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा मध्य दक्षिणपंथी मिशेल बार्नियर को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के विरोध में हजारों लोग कल पूरे फ्रांस में सड़कों पर उतर आए। बार्नियर की नियुक्ति हाल के चुनाव से त्रिशंकु संसद के बाद हुई है, जहां किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। हालांकि वामपंथी गुट न्यू पॉपुलर फ्रंट एनपीएफ ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा एनपीएफ इस बात से नाराज है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनके उम्मीदवार को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खारिज कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद फरहत। पेरिस पैरालंपिक्स में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन आज सभी अखबारों में है। नवदीप की चांदी स्वर्ण में तब्दील, सिमरन ने जीता कांस्य पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है। दैनिक भास्कर लिखता है, आतंकी मुठभेड़ में पैर गंवाने के 22 साल बाद पैरालंपिक्स में देश को दिलाया मेडल, शॉटपुट में भारत के होकातो सीमा को ब्रॉन्ज। महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेश चतुर्थी मनाए जाने का समाचार नवभारत टाइम्स ने सचित्र प्रकाशित किया है। सज गए पंडाल, पधारे गणपति महाराज। हिंदुस्तान लिखता है, गणपति बप्पा गाजे बाजे के साथ पंडालों और घरों में विराजे, मोटे अनाज से बने मोदक का भोग लगाया। बोइंग के स्टार लाइनर यान के सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के बिना ही धरती पर लौटने की खबर भी राष्ट्रीय सहारा सहित कई अखबारों की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, नहीं आई सुनीता, दोनों अंतरिक्ष यात्री की फरवरी में वापसी। स्वीडन ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मोबाइल का उपयोग करने पर लगाई पाबंदी, अमर उजाला की खबर है। भेड़िए के बाद सीआरपी हिंसक हुए, 11 लोगों को घायल किया। दक्षिण खीरी, पीलीभीत और बरेली में सीआर के हमले से अफसर भी चिंतित, हिंदुस्तान की सुर्खी है। अब कुछ दिनों के बाद के लिए बारिश होगी कम, उमस वाली गर्मी फिर से करेगी परेशान, नवभारत टाइम्स ने मौसम शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। एनसीआरटीसी ने किया आरआरटीएस डिपो पर मेरठ मेट्रो का अनावरण, 700 से अधिक लोग एक बार में कर सकते हैं यात्रा, राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है।
धन्यवाद आकर्षिता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर सकती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज 3 देशों सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के शहजादे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज 3 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। भारत ने जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को खाद्य सामग्री भेजी। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष सुलझाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। और नवदीप सिंह ने पेरिस में पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक और महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में सिमरन शर्मा ने कांस्य जीता। इसके साथ ही
समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।